अंश के लिए अरमान की इरिटेशन। आज आस्था के शब्दों और उसके एटीट्यूड ने सबको गर्व से भर दिया। सभी घर वालों को कहीं ना कहीं आस्था की आवाज में अरमान की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अब आगे फिलहाल अब सभी हंसी खुशी के साथ अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए थे। वहीं आस्था ने अब गहरी सांस ली। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए देर ना करते हुए आस्था कहीं और नहीं बल्कि सीधा अरमान के कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। वो चाहती तो बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करके दरवाजा खुद भी खोल सकती थी, लेकिन वो अरमान को ये सोचने का कोई और मौका नहीं देना चाहती थी कि आखिर उसे उसके कमरे का लॉक कैसे पता चला। अरमान, जो उस वक्त काफी हद तक खुद में ही चिढ़ा हुआ था, वो सीधे बाथरूम में चला गया और उस वक्त वो नहा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है तो वो फटाफट टावल लपेटकर बाहर आ गया। उसका हॉट शरीर बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, उसके 8-pack एब्स दिख रहे थे। अरमान ने सिर्फ हफ्ते भर में ही खुद को फिर से लोहे जैसा मजबूत बना लिया था। नहाकर बाहर आने के बाद उसके पूरे बदन से पानी इस तरह बह रहा था मानो जैसे छोटी छोटी नदियां बह रही हों। वो सचमुच एकदम चॉकलेटी शेप्स वाला आयरन मैन लग रहा था। दरवाजे पर हो रही दस्तक की आवाज़ सुनकर अरमान ने सोचा शायद कोई नौकर उसकी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया होगा, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया था। अब जैसे ही आस्था ने अरमान को अपने सामने देखा तो वो गौर से उसे देखने लगी। वहीं अरमान को उम्मीद नहीं थी कि आस्था इस वक्त उसके कमरे पर आ जाएगी। वो भी उसे वहां देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन आस्था की नज़रें तो जाकर सीधे अरमान के बाइसेप्स और चॉकलेटी शरीर पर टिक गईं। अरमान इस रूप में बेहद हॉट लग रहा था। आस्था अपने हॉट दांतों से काटते हुए मन में खुद से बुदबुदाई, उफ मिस्टर डेविल, आप कितने ज्यादा हॉट लग रहे हैं। ओ मैं क्या करूं, खुद को कैसे रोकूं। दिल तो कर रहा है कि जाकर इन्हें छू लूं, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए उसने जल्दी से अपने ख्यालों को झटका और खुद के इमोशंस को छुपाने की कोशिश की। तभी अरमान टॉवल बांधते हुए आस्था को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में आने की? क्या तुम में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है? इतनी रात को कोई लड़की किसी के कमरे में ऐसे कैसे आ सकती है? आस्था ने घबराते हुए अरमान से कहा, वो एक्चुअली स्टडी रूम में आप मुझे डांट रहे थे ना कि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाती, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपके जैसा डिसिप्लिन बने, इसीलिए क्या आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को गाइड कर देंगे, उसे थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस और तौर तरीके सिखा देंगे? बस इतना सुनते ही अंश अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अपनी मम्मा को टुकुर टुकुर ऐसे देखने लगा जैसे कहना चाह रहा हो, ये मेरी मम्मा को क्या हो गया है, ये तो मुझे सीधा डेविल डैडी को दे रही हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि डेविल डैडी मुझे कितना डरा सकते हैं? अब अरमान आस्था की बातें सुनते ही उसे बेरुखी से घूरने लगा। वो मन ही मन चिल्ला रहा था, ये औरत मुझे समझ क्या रही है? क्या मैं इसके बच्चे का पर्सनल बेबी सिटर हूँ? क्या ये मुझे बच्चों को संभालने वाला मानती है? मैं अरमान सिंघानिया हूँ, डेविल किंग अरमान सिंघानिया, जो पूरे देश पर राज करता है, और ये बेवकूफ़ मुझसे कह रही है कि मैं इसका बच्चा संभालूं, बेवकूफ़ लड़की। अरमान मन ही मन आस्था हूँ कोसता रहा। वहीं आस्था की नज़रें तो अभी भी उसके मजबूत शरीर पर अटकी हुई थीं। उसका दिल कर रहा था कि काश वो एक बार अरमान को छू पाए, मगर उसने जल्दी से सिचुएशन संभालते हुए हड़बड़ी में अपनी बात फिर से दोहराई। उसकी रिक्वेस्ट सुनते ही अरमान पूरी तरह से हैरान और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आस्था की इस अजीबोगरीब रिक्वेस्ट का क्या जवाब दे। आखिरकार उसने डेविल स्टाइल में घमंड से कहा, देखो ये फालतू बातें मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की भी कि मैं अरमान सिंघानिया तुम्हारे बच्चे को संभालूंगा। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनकर आस्था एक पल के लिए ठिटक गई और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, मगर अगले ही क्षण उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप ही चाहते थे ना कि मेरा बेटा अनुशासन वाला बने, तो अब आप ही मेरे बेटे को अनुशासन सिखाइए मिस्टर सिंघानिया। इतना बोलकर उसने जबरदस्ती अंश को अरमान की गोद में थमा दिया। इससे पहले अरमान कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आस्था तेजी से वहां से निकल आई, क्योंकि उसी पल आस्था के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये किसी और का नहीं बल्कि वंशिका का था। उस वक्त सब लोग आस्था का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज आस्था के मन में केवल एक ही बात साफ थी, अंश को अब अरमान के ही पास रहना होगा। नानी माँ ने उसे जब बताया था कि अंश रो रहा था तो अरमान खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे चुप कराने के लिए वो उसे सीने से लगाकर झुलाने लगा था। उस लम्हे ने आस्था को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। भले ही अरमान की यादें मिटा दी गई हों, लेकिन उसके दिल में आज भी आस्था और अंश के लिए वही प्यार कहीं ना कहीं बाकी है। ये सच्चाई आस्था जानती थी। अब वो उसी प्यार का सहारा लेना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि जितना हो सकेगा वो अंश को अरमान के करीब रखेगी, क्योंकि जितना अंश अरमान के आसपास रहेगा उतना ही उसका मन शांत रहेगा। पर आस्था ये भी समझती थी कि अगर अरमान का दिल एक बार फिर बदल गया तो उसके पुराने घाव भी हरे हो सकते हैं, और आस्था अपने पति को किसी भी कीमत पर दर्द में नहीं देख सकती थी। इसी सोच के साथ बिना देर किए उसने अंश को अरमान की गोद में थमा दिया और फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। अरमान वहीं खड़ा दंग रह गया। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसके शब्द उसके होठों तक आकर भी अटक गए। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा बंद हो चुका था और आस्था जा चुकी थी। अरमान सिंघानिया, जिसके गुस्से से दुनिया कांपती थी, वो अपनी गोद में बैठे छोटे से अंश को घूर रहा था। तब अरमान ने सबसे पहले अपनी एक शर्ट डाली और एक कैजुअल कपड़े पहने और एक बार फिर अंश को मुड़कर देखने लगा। अंश, जो कि अब छोटे छोटे अपने घुटनों के बल थोड़ा बहुत चलने लगा था, वो चलकर अरमान के करीब जैसे तैसे आ गया और उसके करीब आकर उसे गोद में लेने की जिद करने लगा। अंश को ऐसे देखकर अरमान ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। ना चाहते हुए भी वो झुका और उसने अंश को गोद में ले लिया। उसके माथे की नसें उभर आई थीं। इस लड़की, इतनी हिम्मत कि मुझसे बिना पूछे ये मेरी गोद में बच्चा डालकर चली गई। अरमान ने जबड़े भींच लिए। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मामूली सी लड़की, क्या ये भूल गई कि मैं कौन हूं? डेविल किंग अरमान सिंघानिया। फिर उसने अंश की ओर देखा और उससे उलझी हुई आवाज में कहा, मुझे बच्चों को संभालना नहीं आता। वहीं अंश अपनी डबडबाई आंखों से अपने पिता को देख रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अरमान की शर्ट पकड़ चुकी थीं और वो अपनी मासूम सी हंसी के साथ अरमान के चेहरे को देखता रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके डेविल डैडी उससे इतना नाराज क्यों है। अरमान ने परेशान होकर अंश को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अंश उसकी पकड़ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। छोड़ो मुझे, तुम सुन नहीं रहे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। जितना वो उसे अलग करना चाहता उतना ही अंश उसकी छाती से चिपकता जा रहा था। उस पल अरमान को एहसास हुआ वो बच्चा तो उसे अपना घर मान चुका है। अरमान ने फिर गहरी सांस ली, क्योंकि अंश के करीब होने पर उसे कुछ अलग ही लेवल का सुकून का एहसास हो रहा था। नहीं, मैं नहीं टूटूंगा, नहीं, ये सब उस इरिटेटिंग लड़की की चाल है। उसने मुझे कमजोर करने के लिए ये चाल चली है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अंश की मासूम निगाहें उसके गुस्से पर भारी पड़ रही थीं। वहीं दूसरी ओर
आस्था के कदम तेज हो चुके थे। उसकी दिल की धड़कनें मानो जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानती थी कि अब और देर हुई तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रोफेसर ने उसे जो सच बताया था, उस वायरस की सच्चाई और उसके पीछे छिपा राजवीर का खतरनाक खेल, वो अब हर हाल में सब घरवालों के सामने लाना जरूरी था। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी, सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। फिलहाल जल्दी ही देर ना करते हुए आस्था ने तहखाने में कदम रख दिया था। उसने देखा कि वहां पहले से ही सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका, रौनक और रश्मि को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वो भी वहीं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी घरवाले वंशिका को सवालिया नजरों से देख रहे थे। वहीं ध्रुव तो वंशिका को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कह रहा था, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर तुम्हें वाकई कुछ पता चल गया है तो तुम हम सबसे शेयर भी कर सकती हो। आस्था भाभी तब तक आ जाएंगी, बाकी बची हुई बातें भाभी बता देंगी। तब तक तुम तो कम से कम हमें थोड़ा बहुत सच बता सकती हो, इतनी सस्पेंस क्यों बढ़ा रही हो। वहीं आहान भी ध्रुव की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ वंशिका भाभी, कम से कम आप तो सच बता दीजिए, हमसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप दोनों ने उस वक्त हमारी कोई कॉल नहीं उठाई, तो मजबूरी में हमें मारिया दीदी को आप दोनों के पास भेजना पड़ा, इसलिए प्लीज वहाँ क्या हुआ कुछ तो बताइए। आप लोगों को उस वायरस के बारे में क्या पता चला है और उस वायरस का एंटीडोट बनेगा है या नहीं? कहीं न कहीं सभी घरवालों के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। तभी वंशिका ने उन सबको निराशा से देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिल और दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन इसका जवाब आपको सिर्फ आस्था ही देंगी। वंशिका का ये जवाब सुनकर कोई उससे कुछ और पूछता, उससे पहले ही वो सब तुरंत खामोश गए, क्योंकि उनके कानों में आस्था के कदमों की आने की आहट सुनाई देने लगती है। तभी आस्था वहां आई, उसने वंशिका की ओर एक नज़र देख के सिर हिला दिया और फिर जल्दी से बाकी सबकी ओर देखते हुए आस्था ने सीरियस आवाज में बताना शुरू किया, आप जानते हैं हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि हमारा ये दुश्मन कोई नया दुश्मन नहीं बल्कि पुराना दुश्मन ही है। अब आस्था के मुंह से ये शब्द सुनकर सभी लोग एक दूसरे की शक्ल नासमझी में देखने लगते हैं। वहीं आस्था ने अपने मन में सोचा, अब किसी से भी कुछ भी छुपाना बेकार है, क्योंकि सभी के सामने राजवीर का असली चेहरा पहले भी आ चुका था और सभी घरवाले उसे अच्छे से जानते भी थे। अब आकाश ने अपने माथे पर हाथ रखा, कुछ सोचते हुए उसने आस्था को देख के गंभीर आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो आस्था? जो भी कहना है प्लीज साफ साफ कहो, तब अचानक आस्था की आंखें गुस्से से सुलग गईं और उसका गला कड़वाहट से भर गया। उसने गंभीर आवाज में सबको बताया, अरमान जी को वो वायरस किसी और ने नहीं बल्कि राजवीर जिंदल ने दिया है।